بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتاگرن، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ کارکرم کا آرمب ہم سورہ حجرات کی 10ویں اور 11ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں، اور تلاوت کر رہے ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو اور ایشور سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر دیا کی جائے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے کوئی گٹ دوسرے گٹ کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اچھے ہوں، اور نہ استریاں دوسری استریوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھی ہوں، اور آپس میں نہ ایک دوسرے پر ویانگ کرو، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے پشچات اوگیا کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ اس بات سے پشچاتاپ نہ کریں وہی اتیاچاری ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ آج منگلوار ہے، فروردین کی 3، شابان کی 9 اور مارچ کی 23 تاریخ۔ شوتو، ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ برابر 7,445 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، جبکہ 28 مارچ سے آپ ہمارا یہ کاریکرم شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9,510 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔ ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آئے گا۔ پتر ویوہار کے سمبندھ میں اپنے وچاروں، سجھاؤں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوگت کرانے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.iribi.ir، جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیں، پتا ہے pastoday.com/hi۔ شروتا، ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ سدا کی بھانتی انتراشٹریہ سماچار سنیں گے، اس کے پشچات دینک کاریکرم ہوگا راج نیتک چرچا، اس کے پشچات آپ عید نوروز کے سمبندھ میں سنیں گے ہمارا وشیش کاریکرم، اور سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا قرآن قصے۔ شروتا، یہ تو تھی ہماری آج کے کاریکرم کی روپ ریکھا، اور اب آپ کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار سنیں گے۔ اور اب آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایرانی راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے عام جیون میں آدھنک تکنیک کے استعمال پر بل دیا ہے۔ ندیوں کے پانی کے بٹوارے کو لے کر بھارت اور پاکستان نے پھر سے وارتا شروع کی ہے۔ کابل کا کہنا ہے کہ افغان شانتی وارتا میں بھارت کی بھومکا مہتوپورن ہے۔ بغداد میں ایک بھیشن آتم گھاتی وسفوٹ ہوا۔ اور اب آپ وستار سے محمد مہدی سے سماچار سنیے۔ راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ لوگوں کے جیون کو سنسار کی آدھنک پرستھتیوں کے حساب سے ہونا چاہیے۔ راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے منگلوار کو ای سرکار وکاس پرنالی کے ادگھاٹن سماروہ میں کہا کہ ورتمان سمے میں ایسی پرستھتیاں آ گئی ہیں کہ جب لوگ بہت ہی آسانی سے تکنیک کے مادھیم سے سیوائیں پراپت کر لیتے ہیں۔ راشٹرپتی روحانی نے کہا کہ آج کے سمے میں لوگوں کا جیون پوری طرح سے بدل چکا ہے، اب پارمپرک پرستھتیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کے پریاسوں سے نئی تکنیک کو ویاپک استر پر پریوگ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے راشٹرپتی نے سرکار کے کاموں کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ دیش کی 11ویں اور 12ویں سرکار کے دور میں دیکھا گیا کہ بہت سے کام اب آدھنک ڈھنگ سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوینتم آدھنک تکنیک کا پریوگ کر کے لوگوں، چکتسکوں اور بیمہ کمپنیوں کے پاس بہت ہی سٹیک سواستھ رپورٹیں پہنچا کریں گی۔ اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی نے پاکستان کے راشٹرپتی اور پردھان منتری کے نام الگ الگ سندیش میں پاکستان کے راشٹریہ دیوس پر مبارکباد دی ہے۔ اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی ڈاکٹر حسن روحانی نے پاکستان کے راشٹریہ دیوس کے اوسر پر اس دیش کے راشٹرپتی عارف علوی اور پردھان منتری عمران خان کے نام الگ الگ سندیش بھیج کر بدھائی دی ہے۔ راشٹرپتی روحانی نے اپنے سندیش میں اس بات کی آشا ویکت کی ہے کہ دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں دوارا کیے جا رہے پریاسوں کے کارن سبھی چھیتروں میں تہران اور اسلام آباد کے بیچ دوپکشیہ سمبندھوں میں وستار اور ادھک مضبوطی आएगी। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि हम इस बात की भी उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार और विकास के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भेजे अपने संदेश में कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों भाई और मुस्लिम देशों में मौजूद अपार क्षमताएं साथ ही समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत समानताओं को देखते हुए पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में ईरान और पाकिस्तान जैसे महान राष्ट्रों के बीच संबंधों में विस्तार और मजबूती के साक्षी होंगे। इसी तरह राष्ट्रपति रूहानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नाम भेजे अपने संदेश में लिखा है कि हमें आशा है कि दो महान पड़ोसी देशों के बीच मौजूद अपार क्षमताओं और समानताओं को देखते हुए सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग से दोनों इस्लामी राष्ट्र दिन प्रतिदिन विकास के रास्ते को तय करेंगे। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर लगभग 2.5 साल के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई है। अब देखना यह होगा कि ये बातचीत दोनों देशों के रिश्तों में आई तनातनी को कम कर पाती है या नहीं। नदियों के पानी के बंटवारे के लिए बनाई स्थायी सिंधु आयोग की सालाना बैठक नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है। 2 दिन की वार्ता 24 मार्च तक चलेगी। आयोग की पिछली बैठक 29-30 अगस्त 2018 को लाहौर में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में की गई इंडस वाटर्स ट्रीटी के मुताबिक आयोग की बैठक हर साल कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। एक बैठक भारत में तो अगली पाकिस्तान में, लेकिन इस बार दो बैठकों के बीच का अंतराल अधिक लंबा हो गया। वर्ष 2019 में आयोग के पाकिस्तानी आयुक्त एक टीम लेकर चिनाब नदी के घाटी में निरीक्षण के लिए चले गए थे और 2020 में आयोग की बैठक कोरोना वायरस महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी। वर्ष 2021 की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व पाकिस्तान PIC के आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने तालिबान और काबुल के बीच शांति वार्ता को सार्थक बनाए जाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया है। अफगान विदेश मंत्रालय के एक बयान में घोषणा की गई है कि इस देश के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अमतर ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार, अफगान शांति वार्ता पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय संपर्क परियोजना पर भी चर्चा की, जिसमें अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया से दक्षिण एशिया तक रेलवे लाइनों का निर्माण, ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास और नई दिल्ली और काबुल के बीच व्यापार जैसे विषय शामिल थे। इस मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर बल दिया और शांति प्रक्रिया और पिछले 2 दशकों के दौरान अफगानिस्तान की उपलब्धियों का समर्थन किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमतर ने अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए नई दिल्ली से वार्ता को परिणाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। यमन की राष्ट्रीय मुक्ति सरकार ने सऊदी अरब द्वारा युद्ध विराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को हास्यास्पद बताते हुए कहा है कि हमलावर देशों को तुरंत हमले बंद और घेराबंदी समाप्त कर देनी चाहिए। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यमन की राष्ट्रीय मुक्ति सरकार के वार्ताकार प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मोहम्मद अब्दुलसलाम ने सऊदी अरब द्वारा युद्ध विराम के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद अब्दुलसलाम ने कहा कि हम हमलावर देशों को एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं कि वो यमन के खिलाफ हमले करना बंद और घेराबंदी को समाप्त कर दें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तो स्वयं इस युद्ध का एक पक्ष है जो यमन पर हमले को बंद करने और घेराबंदी समाप्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। अब्दुल सलाम ने कहा कि अगर वो युद्ध विराम के लिए गंभीर है तो पहले हमले बंद करें और घेराबंदी समाप्त करें। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की सऊदी अरब की ओर से पेशकश किया जाना कोई नई बात नहीं है। यमन की राष्ट्रीय मुक्ति सरकार के वार्ताकार प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल सलाम ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों का खोला जाना मानवाधिकार है और इस मामले को राजनीतिक और सैन्य सौदेबाजी और दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संचार माध्यमों ने इराक की राजधानी बगदाद में एक भीषण विस्फोट की सूचना दी है। फार्स न्यूज के अनुसार इराकी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी बगदाद के अल मुश्तमल क्षेत्र में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ। विस्फोट करने वाला आत्मघाती एक मोटरसाइकिल पर सवार था। इस विस्फोट में एक व्यक्ति मारा गया जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस बारे में एक इराकी सूत्र का कहना है कि सुरक्षा बलों ने शक होने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया। सुरक्षा बलों ने जैसे ही उसका पीछा किया उसने उसी समय विस्फोटक पदार्थों से धमाका करके स्वयं को उड़ा लिया। इससे पहले 7 मार्च को भी इराकी सूत्रों ने बगदाद में 2 विस्फोटों की सूचना दी थी। दाइश के आतंकवादियों ने इराक में फिर से विध्वंसक कार्रवाइयां आरंभ कर दी हैं। उनके दमन के लिए इराकी सुरक्षा बलों ने इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान आरंभ कर दिए हैं। यरूशलम में कोसोवो के दूतावास के उद्घाटन से बालकन और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। खासतौर पर प्रिस्टीना से तिराना तक अल्बानियाई लोग इस कदम से बहुत सख्त नाराज हैं। वे इसे अपनी मान्यताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अपमान के रूप में देख रहे हैं। यहां तक कि कोसोवो के राष्ट्रपति वी जोसा उस्मानी भी इस घटना से हैरान और परेशान हैं और उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया है। कई अल्बानियाई बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने इस कदम का विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी बताया है। और अंत में यह समाचार कि पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में बाइक सवार बंदूकधारियों ने कम से कम 137 लोगों की हत्या कर दी। हमलावरों के तांडों से गांव के गांव शमशान में तब्दील हो गए। और इसी के साथ रेडियो तिरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में हम नौरोज, फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध और भारत से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ में नौरोज मनाया गया जिसमें कई देशों के कूटनयिकों ने भाग लिया। न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
मानव इतिहास के महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक नौरोज को ईरान की पहल पर पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ 3000 साल पुराने हमारे त्योहार नौरोज को अंतर्राष्ट्रीय नौरोज के रूप में मना रहा है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी इसको मैनहट्टन में मनाया गया, किंतु कोरोना के कारण इस बार ये आयोजन वर्चुअल रहा। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत तख्त रवांची का नौरोज संदेश पहले के नौरोज संदेशों से बहुत अलग था। इस तनावपूर्ण एवं संकट ग्रस्त वातावरण में जिसमें दुश्मनियां अपने चरम पर हैं, नौरोज मानवीय मूल्यों का, शांति एवं मित्रता का पैगाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अतिरिक्त उन 11 देशों के राजदूतों ने भी इस वर्चुअल बैठक में उपस्थित होकर भाषण दिया जिनके यहाँ पर नौरोज पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
बैत المقدس में रहने वालों की समस्याओं को दर्शाने के उद्देश्य से फिलिस्तीनियों ने एक सीरियल बनाया है जिसे बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं साथी मोहम्मद मेहदी।
फिलिस्तीनियों ने कम संसाधनों के साथ प्रतिरोध पर एक सीरियल बनाया है। जिन लोगों ने इस सीरियल में हिस्सा लिया है उनका कहना है कि यह वास्तव में प्रतिरोध से ही संबंधित है। इस सीरियल का नाम आसमान का दरवाजा है। इस सीरियल में बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनियों की जिंदगी को दिखाया गया है। इसको बनाने के लिए बैतुल मुकद्दस जैसी फिल्म सिटी बनाई गई है। ये बिल्कुल उस जैसी है। ये सीरियल बैतुल मुकद्दस नगर में तथा ज़ायोनी शासन की कार्रवाइयों एवं यहूदीकरण के कारण वहां के रहने वालों की मुश्किलों पर आधारित है। इस सीरियल में इसराइल के साथ कुछ देशों के संबंध सामान्य करने को भी दिखाया गया है। मेरा मानना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इस काम से संबंध सामान्य करने वाले देश फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सीरियल ज़ायोनी सैनिकों के मुकाबले में फिलिस्तीनियों के रोजाना के प्रतिरोध को दर्शाता है। इसमें काम करने वाले एक कलाकार का कहना है कि उसने एक फिलिस्तीनी बंदी का रोल अदा करते हुए प्रतिरोध की सोच को दर्शाने का प्रयास किया है। मैंने एक फिलिस्तीनी बंदी के रूप में काम किया है जिसे प्रतिरोध ने आजाद कराया है। आजाद होने के बाद ये फिलिस्तीनी बंदी प्रतिरोध से जुड़ जाता है और उनके अभियानों में भाग लेता है। ये कलाकार इसमें काम करने वाला केवल फिलिस्तीनी नहीं है, बल्कि उसको दर्शकों को परिवेष्टन और चीजों की कमी को भी दिखाना है। कोई भी चीज फिलिस्तीनियों को उनकी पहचान की सुरक्षा से नहीं रोक सकती। आसमान का दरवाजा नामक सीरियल बैतुल मुकद्दस के रहने वालों की जिंदगी और इस चीज को दर्शाता है कि दसियों साल से फिलिस्तीनी किस प्रकार से ज़ायोनियों के प्रतिरोध के लिए सब कुछ दांव पर लगाते आ रहे हैं। गजा से IRIB के लिए इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। कोरोना या कोविड 19 की वैक्सीन के बनने के बाद से इसके बांटे जाने को लेकर आरंभ से ही विवाद चल रहा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की वैक्सीन के वितरण पर चिंता जताते हुए इसके सही ढंग से वितरण पर विशेष बल दिया है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
WHO ने विश्वभर में वैक्सीन के फराहमी को लेकर कई प्रश्न उठाए हैं। अपने मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में जिस तरह से वैक्सीन लोगों को देना चाहिए था उस तरह से नहीं दिया गया और हमें अपना फेलियर स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कोविड से जो स्थिति पैदा हुई है उससे निपटने का एक वाहिद तरीका यह है कि फौरी तौर पर आम लोगों को वैक्सीन दिया जाए। उन्होंने इस अवसर पर तमाम देशों को संबोधित करते हुए कहा कि वो इस प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
In January, I said that the world was on the brink of a catastrophic moral failure unless urgent steps were taken to ensure equitable distribution of vaccines.
इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड की नई स्थिति को देखते हुए सख्त आदेश दिए हैं। श्रीनगर में DM ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मास्क के बगैर पाया गया तो उसे 2000 का जुर्माना किया जाएगा और फौरी तौर पर उसका रैपिड टेस्ट भी किया जाएगा। इन आदेशों के बाद श्रीनगर और घाटी के अन्य क्षेत्रों में काफी संख्या में लोगों ने मास्क का इस्तेमाल अमल में लाया और बताया जाता है कि इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। इस बीच जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पंचायत विधायकों से एक बैठक की और उसके बाद उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हर स्तर पर तरक्की लाने के लिए हर एक वर्ग को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो ही जम्मू कश्मीर को तरक्की के हर राह पर लिया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
इसके लिए नेशनल वाटर मिशन ने भी सभी राज्यों तथा UP से अनुरोध किया है कि प्रत्येक जिले शहर पंचायत में रेन सेंटर्स वर्षा केंद्र बनाए जाए। इन केंद्रों के लिए डेडिकेटेड इंजीनियर हो सकते हैं, मोबाइल फोन हेल्पलाइन चालू की जा सकती है और इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में हमारे प्रमुख सचिव के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम करेगी। इस प्रकार यह केंद्र जो है जिले के सभी के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन भी देगा और उसी तरह वो काम करेगा। हर कदम पर आप लोगों को बताएगा कि वर्षा ऋतु में, बारिश के सीजन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर कैसे काम किया जाना है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं के पास बहुत खाली जमीन है और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जिन जिन शिक्षण संस्थाओं में मैं गया हूँ, खासतौर से उच्च शिक्षा के केंद्रों में, वहां पर्याप्त जमीन है। अब इन संस्थाओं को भी आगे बढ़ करके जल संचयन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में कई दिवस से मौसम इंतहाई खराब है और श्रीनगर जम्मू मार्ग बंद पड़ा है जबकि करगिल शाहरा भी कई दिवस से बंद ही है। प्रशासन का कहना है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 25 मार्च के बाद मौसम में बेहतरी के आसार नुमाया होंगे। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इससे हमको अवश्य अवगत करवाइए। रेडियो तेहरान के कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर किसी भी समय देख सकते हैं। parstoday.com/hi पर रेडियो तेहरान के सारे ही कार्यक्रम उपलब्ध हैं। समय मिले तो अवश्य विजिट कीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से, लेकिन इससे पहले पेश है नौरोज के बारे में विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, ईद नौरोज पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, नवरोज एक प्राचीन परंपरा है जो लगभग 2500 साल पहले से ईरानियों में प्रचलित है। ये परंपरा ईरानी घरों में जीवित है और ये ईरानियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। दोस्तों, इस बात के ज्यादा प्रमाण नहीं है कि क्या हखामनशी और अशकानी काल में भी ईद नौरोज का जश्न मनाया जाता था या नहीं, जबकि इतिहास के कुछ दस्तावेजों में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि हखामनशी काल में ईद नौरोज का जश्न बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता था।
इतिहास में मिलता है कि ईरान के प्राचीन राजा साइरस ने जब बाबिल पर कब्जा किया तो उसने अपने पुत्र कैम्बस द्वितीय को जश्न नवरोज में वहां का नरेश घोषित किया। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि पेर्सपोलिस की शानदार इमारत का निर्माण भी जश्न नवरोज के भव्य कार्यक्रमों के लिए ही किया गया था। बताया जाता है कि हकामनशी शासनकाल के अधीन धरती के रहने वाले नवरोज के दिनों में एकत्रित होते थे ताकि महान राजा की सेवा में अपने तोहफे और उपहार पेश करें।
जश्न में शामिल होने वाले लोग इस भव्य इमारत की सीढ़ियों से होते हुए महल के दरवाजे के अंदर जाते थे और कंक्रीट की दीवारों के किनारे से होते हुए सद सुतून नामक महल में दाखिल होते थे। दारियुश प्रथम उस काल के शासकों में से एक था जिसने वैभवशाली महलों का निर्माण करवाकर अपने काल के लोगों और शासकों को अपनी सत्ता की महानता दिखाने का प्रयास किया। उसने वर्तमान शिराज नगर के निकट पार्स के केंद्र में रहमत पर्वत के आंचल में तख्त जमशेद का महल बनवाया। इस इमारत की वास्तुकला इस प्रकार थी कि उसने दारियुश की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन होता था। निश्चित रूप से इस महल की वास्तुकला उस काल में ईरानियों के निर्माण कौशल, उनकी कला और उनकी कलाकारी का परिचय देती थी।
प्राचीन फारस के शिलालेखों के अनुसार तख्त जमशेद का निर्माण वर्ष 512 ईसा पूर्व में हुआ। महलों का ये समूह एक ऊंची जमीन पर 457 मीटर लंबाई और 300 मीटर के चौड़ाई में किया गया। उस ऊंची जमीन का ढांचा गहरे ग्रे रंग का है। पत्थरों को बड़ी बारीकी से तराश कर एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। इन पत्थरों के बीच किसी प्रकार का मसाला नहीं है बल्कि शीशे या लोहे के ब्रैकेट्स के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़ा गया है।
सारी पौराणिक कहानियों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नवरोज नया होने और परिवर्तन का प्रतीक है और ये प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ जश्न है। ये वो जश्न है जो बीच मार्च से शुरू होता है जब पूरी दुनिया में हरियाली होती है। नवरोज साल के बदलने का समय है। ईरानी राष्ट्र की कई पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन जश्न नवरोज अपनी प्राचीन परंपरा पर यथावत बाकी है। इस दिन सभी ईरानी, चाहे वो जिस जाति व रंग का हो, एक साथ जमा होते हैं और नवरोज के अपने राष्ट्रीय जश्न को मनाते हैं। नवरोज इंसान और प्रकृति के द्वारा शुरू होने की शुभ सूचना देता है।
दोस्तों, वास्तव में नवरोज के रीति रिवाज मनुष्य को प्रकृति से जोड़ते हैं और उसे ईश्वर से निकट करते हैं। वसंत बेहद खूबसूरत मौसम है। इस मौसम में पौधे में कपोलें निकलती हैं, कलियां मुस्कुराती हैं और फूलों में बदल जाती हैं और फिर पेड़ फल देते हैं और इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते समय प्रकृति बेहद सुंदर लगती है और इसी सुंदरता का आनंद उठाने के लिए ईरान जैसे देशों में लोग बाहर के मौसम में कुछ समय बाहर और प्रकृति की गोद में ज़रूर गुजारते हैं और बाहर की सुंदरता ऐसी होती है कि मनुष्य के मन को भाती है क्योंकि प्रकृति से उसका गहरा संबंध होता है, इसलिए वो प्रकृति की गोद में आनंद का आभास करता है। नवरोज समाज में ताजगी भरता है।
इतिहास में मिलता है कि सासानी शासन श्रृंखला ने वर्ष 224 से 651 ईस्वी तक ईरान पर शासन किया और दुनिया के प्राचीन साम्राज्य में इसका शुमार होता था। उस काल में ईरान का सरकारी धर्म पारसी था और ईसाई व यहूदी अल्पसंख्यक भी ईरान में रहते थे। सासानी काल में जनता और कुलीन वर्ग में नवरोज का विशेष स्थान था और इस जश्न को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता था। इस काल में जश्न नवरोज 6 दिनों तक मनाया जाता था, जिसमें छोटा नवरोज और बड़ा नवरोज शामिल था। इस जश्न के शुरू होने से पहले 4 शंबे सूरी अर्थात साल का अंतिम बुधवार और घरों की सफाई, खाने तकानी जैसे कार्यक्रम आयोजित होते थे और उसके एक सप्ताह के बाद सिजदा बिदर यानी आज के प्राकृतिक दिवस का जश्न मनाया जाता था।
ईरान में हर साल नव वर्ष पवित्रता व स्वच्छता से आरंभ होता है। खाने तकानी नामक रीति के अंतर्गत नए साल से पहले हर ईरानी अपने घर की पूरी तरह से सफाई करता है। इसके साथ ही सरकार नगरों और सड़कों की विशेष रूप से सफाई करती है। इस तरह से ईरान में नए वर्ष से थोड़ा पहले हर जगह लोग साफ सफाई में व्यस्त नजर आते हैं। घरों में सफाई होती है, खिड़कियों की शीशे और दरवाजे साफ किए जाते हैं, बहुत से लोग घर में रंग कराते हैं और सामान भी नए खरीदते हैं, पर्दे और कालीन धोए जाते हैं। इसलिए ईरान में साल के अंतिम दिनों में कालीनों की धुलाई करने वालों, साफ सफाई करने वालों और दुकानदारों की व्यस्तता बहुत अधिक बढ़ जाती है।
ईरान के राष्ट्रीय उत्सवों में से एक नवरोज है, जो इस देश की एक सांस्कृतिक परंपरा है। इसी नवरोज के उत्सव में एक उत्सव सिजदा बिदर या प्राकृतिक दिवस है। ये उत्सव या त्योहार नवरोज के उत्सवों का अंतिम उत्सव माना जाता है। प्राचीन काल से ईरानी नववर्ष के आरंभिक 12 दिनों को साल के 12 महीनों के रूप में याद करते आए हैं। इस प्रकार 13 फरवरी दिन को ये सारे उत्सव समाप्त होते थे। इसी दिन ईरानी बागों और जंगलों में जाकर जश्न मनाते थे।
दोस्तों, सासानी काल में ईरानी महीने की शुरुआती 5 दिन छोटा नवरोज मनाते थे और ये 5 दिन आम लोगों से विशेष था। इसकी एक खास बात ये थी कि इन दिनों में राजा अपनी प्रजा से मुलाकात करता था। इसका मतलब ये है कि किसानों, धर्मगुरुओं, सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों जैसे लोगों से क्रमशः मुलाकात होती थी और मुलाकातकर्ता अपने साथ लाए हुए कीमती और अपनी हैसियत के अनुसार तोहफे राजा की सेवा में पेश करते थे। इन 5 दिनों के बाद बड़े नवरोज के जश्न की शुरुआत होती थी, जो केवल 1 दिन चलता था और जिसमें सरकारी पदाधिकारी राजा की सेवा में उपस्थित होते थे और उसके बाद आधिकारिक रूप से नवरोज का जश्न समाप्त हो जाता था।
उस काल में नवरोज को इतना अधिक महत्व दिया जाता था, जिसके प्रभाव उस जमाने और उस बाद वाले काल की कला और संगीत पर भी साफ नजर आता था। मनु चेहरी और निजामी जैसे ईरान के प्रसिद्ध शायरों के शेरों और कविताओं में बड़ा नवरोज, छोटा नवरोज और नवरोज कुबाद जैसे शब्द मिलते हैं। इसी प्रकार प्राचीन लेखकों और इतिहासकारों की किताबों में भी नवरोज का उल्लेख काफी मिलता है। शताब्दियों से ईरानी नवरोज को सृष्टि के महा आयोजन, हरियाली का प्रतीक और प्रकृति के पुनर्जीवित होने के उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये कार्य ईरानियों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात भी जारी है और इसमें कुछ इस्लामी परंपराएं भी शामिल कर ली गई हैं। नवरोज प्रसन्नता और प्रकृति के सैर सपाटे का उत्सव है तथा प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत करने पर इस्लाम में भी बहुत बल दिया गया है।
उमावी शासकों जैसे आरंभिक शासकों ने पहले तो नौरोज को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन ईरान की जनता से राष्ट्रीय परंपरा को मनाने से पीछे नहीं हटे और उन्होंने इस्लामी शासकों और खलीफाओं के निकट भी अपनी परंपराओं का प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। बनी अब्बास के सत्ता में पहुंचने और बनी उमैया के पतन के बाद हालात कुछ बेहतर हुए और ईरानियों की कुछ राष्ट्रीय परंपराएं पुनर्जीवित हो गईं। ईरानी सत्ता में भी पहुंचे और उन्होंने अब्बासी शासन में अपनी समृद्ध संस्कृति का विस्तार शुरू कर दिया।
विभिन्न कालों में प्राचीन परंपराओं के बाकी रहने का एक अहम राज ये है कि उस काल के शासकों और राजा महाराजाओं ने उन परंपराओं का समर्थन किया और आम लोगों के साथ साथ धीरे धीरे ये प्राचीन परंपराएं महलों का रुख करने लगीं और बाद में सरकारी स्तर पर नवरोज का जश्न मनाया जाने लगा। अब्बासी शासन काल के बाद भी ईरान में सरकार द्वारा इसका समर्थन होता रहा, जबकि इसको ईरान की राष्ट्रीय ईद के रूप में मनाया जाने लगा और यही वजह है कि इस्लामी लेखकों और इतिहासकारों ने ईद नवरोज और ईरान की अन्य ईदों का उल्लेख अपनी किताबों में किया, जबकि शायरों ने इससे अपने शेरों की शोभा बढ़ाई।
सामानी, गजनवी और उसके बाद के राजाओं के काल में भी नवरोज और मेहरगान और सदे नामक बड़ी ईदों का प्रचलन था, लेकिन ईरान पर मंगोलों के हमले के बाद हालात बहुत तेजी के साथ बदल गए। ईरान में मंगोलों के अत्याचारों, लूटपाटों और जनसंहारों के बीच नवरोज भी अन्य त्योहारों की भांति अपनी असल हैसियत खो चुका था, लेकिन धीरे धीरे हालात में बेहतरी आई और नवरोज गुमनामी के अंधकार से एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया।
सफवी शासन काल में नवरोज का एक बार फिर महत्व बढ़ गया। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि सफवी शासन काल में नवरोज अन्य कालों की तुलना में अलग अंदाज से मनाया जाता था और उस पर धर्म का असर साफ नजर आने लगा था। इस काल में नवरोज राष्ट्रीय त्योहार के साथ साथ धार्मिक त्योहार के रूप में भी मनाया जाने लगा। यही वजह है कि इस काल में नवरोज ने अपनी प्राचीन परंपराओं को फिर से हासिल कर लिया और तब से लेकर अब तक उसी अंदाज में नवरोज का जश्न मनाया जाता है। सफवी शासन काल से लेकर अब तक ईरानी मुसलमानों ने एक मूल्यवान धरोहर के रूप में नवरोज की रक्षा की है। तो श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कुमार अब्बास का सलाम स्वीकार करें। कार्यक्रम में सूरह तौबा की कुछ आयतों का अनुवाद और संक्षिप्त व्याख्या पेश करेंगे।
ۖ
पवित्र कुरान के कुल सूरों की संख्या 114 है, जिनके अलग अलग नाम हैं। इन सूरों में से एक सूरे का नाम तौबा है। सूरे तौबा पवित्र कुरान का नवा सूरा है, जिसमें 129 आयतें हैं। कार्यक्रम में हम सूरे तौबा के जिन आयतों का उल्लेखन करने जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश का संबंध जहाज से है। पवित्र नगर मक्का की विजय के बाद हिजाज के अधिकांश क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से शांति स्थापित हो चुकी थी। इस स्थिति को देखते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम या वर्तमान सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार की योजना बनाई। इसी उद्देश्य से उन्होंने शाम के तत्कालीन शासक बुसरा को एक पत्र लिखा। ये पत्र उन्होंने हारिस उमर अजदी के माध्यम से शाम के शासक को भिजवाया था। हारिस जब पैगंबर इस्लाम का पत्र लेकर शाम जा रहे थे तो वे मूता नामक क्षेत्र से गुजरे। मूता वर्तमान समय में जॉर्डन में स्थित है। मूता के शासक शर्जील गसानी को जब ये पता चला कि हारिस पैगंबर इस्लाम का पत्र लेकर शाम के शासक के पास जा रहे हैं, तो उसने हारिस को शहीद करवा दिया। हारिस की शहादत के साथ ही एक अन्य घटना ये घटी कि 15 लोगों के उस गुट पर हमला कर दिया गया जो पैगंबर इस्लाम के आदेश पर जातुत तुलू नामक क्षेत्र में इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार में लगा हुआ था। जिस गुट पर हमला किया गया था उन लोगों में केवल एक व्यक्ति ही जिंदा बचकर घायल अवस्था में वापस मदीना आ पाया था, जबकि बाकी सारे लोग शहीद हो गए। पैगंबर इस्लाम को जब इस घटना की सूचना मिली तो वे इससे बहुत दुखी हुए। इस घटना के बाद आपने इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश जारी किया, जो इतिहास में मूता युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मूता युद्ध के बाद सन 9 हिजरी कमरी में पैगंबर इस्लाम को सूचना मिली कि रोम की सेना मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहती है। इस सूचना के आधार पर पैगंबर इस्लाम ने इस्लामी शासन की रक्षा के लिए मुसलमानों के लामबंद होने का आदेश दिया। आपने मुसलमानों से तबूक जाकर रोमियों से युद्ध का आह्वान किया। तबूक नामक क्षेत्र शाम और मदीने के बीच में था, जिसकी दूरी मदीने से बहुत अधिक थी। इस युद्ध में मुसलमानों का मुकाबला उस सेना से था जो हथियारों से पूरी तरह लैस थी। हथियारों के मामले में वे मुसलमानों के मुकाबले में बहुत मजबूत थे। एक हिसाब से वे लोग अपने सामने वाले पक्ष पर भारी पड़ रहे थे। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों से कहा कि वे अपने लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा करें। आपने मुसलमानों को सशस्त्र करने के लिए वहां के सभी कबीलों से सहायता मांगी। हजरत मोहम्मद ने मक्के के गवर्नर एताब बिन असीद को भी खत लिखकर आदेश दिया था कि वे मक्के के निकटवर्ती कबीलों से भी इसमें भाग लेने का आह्वान करें। इसी के साथ उन्होंने धनवानों से कहा था कि वे अपनी क्षमता के अनुसार मुसलमान योद्धाओं के लिए खाने पीने का सामान और हथियार उपलब्ध करवाएं। उस समय मदीने के अधिकांश लोग खेती किसानी करते थे। जिस समय पैगम्बर इस्लाम ने तबूक जाने का आदेश जारी किया था, उस समय खेती की फसल तैयार हो चुकी थी और उसे काटने का समय आ पहुंचा था। दूसरी बात यह थी कि तबूक की दूरी मदीने से बहुत अधिक थी और रास्ते में कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना था। तीसरी बात यह थी कि रोम उस समय की एक महाशक्ति था जिसका मुकाबला करने का साहस हर एक में नहीं था। बहुत से लोगों का विचार था कि रोम से टकराया नहीं जा सकता। इन्हीं कुछ बातों की वजह से बहुत से लोग तबूक जाने से बच रहे थे। इसी बीच सदैव ही मुसलमानों का मनोबल गिराने के प्रयास में लगे रहने वाले मुनाफिकों ने अवसर का लाभ उठाते हुए मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। लोगों के बीच विवाद फैलना, फूट डालना, वास्तविकताओं को उलट कर प्रस्तुत करना, अफवाह फैलाना और निराधार एवं अवास्तविक सूचनाएं देना ऐसे काम हैं जो मुनाफिक या मिथ्याचारी समाज में अपनी स्थिति को बचाने के लिए आरंभ से करते आए हैं। ये बात स्पष्ट है कि सत्य और असत्य के बीच युद्ध के मोर्चे पर मिथ्याचारियों की उपस्थिति सत्य के योद्धाओं के मनोबल को गिराने और उनके बीच मतभेद एवं संशय फैलाने के उद्देश्य से ही है। अंततः मिथ्याचारियों का दुष्प्रचार रंग लाया اور اس کا پریڑام یہ نکلا کہ بہت سے لوگ الگ الگ بہانے بنا کر اس یدھ میں جانے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان پرستھتیوں میں قرآن کے 9 سورے سورہ توبہ کی 38 اور 39 آیتیں نازل ہوئیں، جن کا انواد اس پرکار ہے: ہے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ ایشور کے مارگ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم دھرتی سے چپک کر رہ گئے؟ کیا تم پرلے کے بدلے سانسارک جیون سے راضی اور پرسن ہو گئے ہو؟ تو جان لو کہ پرلے میں اس سانسارک جیون کا لاب اتینت تچھ ہے۔ یدی تم جہاد کے میدان کی اور آگے نہ بڑھو گے تو ایشور تمہیں اتینت کڑے دنڈ میں گرست کر دے گا اور تمہارے ستھان پر دوسری جاتی کو لے آئے گا، اور جان لو کہ تم اسے کوئی کھتی نہیں پہنچا سکتے، اور ایشور نشچت روپ سے ہر بات میں سکشم ہے۔ ایشور اور پیغمبر اسلام پر پکا اور ٹھوس وشواس رکھنے والے واستوک مسلمان پیغمبر اسلام کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے یدھ میں جانے کے لیے تیار تھے۔ ان سچے مسلمانوں نے اپنی کھمتا کے انوسار یدھ سے سمبندھت چیزیں اکٹھا کی تھیں۔ اسی بیچ ایک غریب مسلمان کچھ کھجوریں لے کر پیغمبر اسلام کی سیوا میں اپستھت ہوا۔ اس نے ان کھجوروں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ہے رسول، میں نے دن بھر مزدوری کی تھی، جس کے بدلے مجھے مزدوری کے روپ میں کچھ کھجوریں ملیں۔ ان کھجوروں میں سے آدھی میں نے اپنی بیوی بچوں کو دے دی اور آدھی آپ کی سیوا میں لا کر آیا ہوں تاکہ اسے آپ مسلمانوں کے لیے استعمال کر سکیں۔ اسی پرکار ایک ان مزدور بھی تھوڑی سی کھجوریں لے کر پیغمبر اسلام کی سیوا میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے کل رات کھیت میں سینچائی کی تھی، جس کے بدلے مجھے یہ کھجوریں ملی ہیں، ان کو میں آپ کی سیوا میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی دوران کچھ متھیاچاریوں نے اپنے آپ کو دوسروں پر وریتا دینے کے ادیش سے ادھک دان کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ مسلمانوں دوارا کم دان دیے جانے کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ اسی دوران سورہ توبہ کی آیت سنکھیا 79 نازل ہوئی، جس کا انواد یہ ہے: جو لوگ دان دکشنا میں کھلے دل سے بھاگ لینے والے ایمان والوں تتھا ان دردروں پر جن کے پاس دینے کے لیے اپنی محنت و کھمتا کے اترکت کچھ نہیں ہے دوش لگاتے ہیں اور پھر ان کا پریاس کرتے ہیں، تو جان لینا چاہیے کہ ایشور بھی ان کا پریاس کرے گا اور ایسے ہی لوگوں کو کڑا دنڈ دیا جائے گا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ وہ اپنے دائتوں کا پالن نہیں کرتے، بلکہ کم آرتھک سہایتا دینے والے ایمان والوں کا پریاس کرتے ہیں۔ وہ دردروں کی سہایتا کو مول ہین بتا کر ان کا پریاس کرتے ہیں۔ متھیاچاریوں کے اس اشسٹ ویوہار کے اتر میں قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ ایشور ان کی بری نیتوں، آنترک کفر اور گپت باتوں سے بھلی بھانتی اوگت ہے؟ سمے پڑنے پر وہ انہیں اوش دنڈت کرے گا، اور وہ بھی اتینت کڑا دنڈ۔ یہ آیت ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ ایمان والوں پر کٹاکش کرنا اور ان کا مذاق اڑانا متھیاچاریوں کی نشانی ہے۔ ہمیں پریاس کرنا چاہیے کہ یدی ہم سوئم سارتھک کام نہیں کرتے تو کم سے کم دوسروں کے کاموں کو تچھ نہ سمجھیں۔ اسلامی شکشاؤں کے حساب سے ہر کسی کا دائتو اس کی کھمتا کے انوسار ہوتا ہے۔ آرتھک سہایتا کے ساتھ ہی سہایتا کرنے والے کی بھاؤنا سب سے ادھک مہتوپورن ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں میں جہاں پر مضبوط ایمان والے موجود تھے، وہیں پر کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی تھے۔ کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی آدیشوں کا پالن کرنے میں بہت سست تھے۔ اس پرکار کے لوگ اسلامی آدیشوں کے پالن سے بچنے کے لیے نئے نئے بہانے بنایا کرتے تھے۔ انیکیشور وادیوں کے پربھاؤ میں آ کر مدینے کے بہت سے مسلمان تبوک نامک یدھ سے بھاگنے کے پریاس میں تھے۔ اسلامی آدیشوں کے پالن سے بچنے اور تبوک یدھ میں بھاگ نہ لینے کے ادیش سے کچھ لوگوں نے جو نرادھار ایوم بیکار بہانے بنائے، ان میں سے ایک جد بن قیس بھی تھا۔ جد بن قیس بنی سلمہ قبیلے کا سردار تھا۔ جب اس نے یدھ میں جانے کے لیے بہانہ بنایا اور جب اس سے کہا گیا کہ یدھ میں جاؤ، تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، میرے سارے قبیلے والوں کی یہ بات پتا ہے کہ مجھ کو عورتوں سے بہت لگاؤ ہے۔ جب میں رومیوں کے ورودھ یدھ میں بھاگ لینے جاؤں گا تو وہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر میرے من میں پاپ جنم لے سکتا ہے۔ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں ان کو دیکھ کر میں غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ ایسے میں بہتر ہے کہ مجھ کو آپ مدینے میں ہی رہنے دیجئے تاکہ میں سمبھاوت پاپ سے پوری طرح سے سرکشت رہ سکوں۔ ہے ایشور کے رسول، آپ مجھ کو اس نیتک بھرشٹاچار سے بچائیے، کیونکہ ایسی استھتی میں میرے لیے خود پر نینترن رکھنا سمبھو نہیں رہے گا۔ اسی دوران سورہ توبہ کی 49 آیت اتری جو کہتی ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے جہاد کے لیے نہ جانے کی انومتی دیجئے اور مجھے برائی میں نہ ڈالیے، جان لو کہ یہ لوگ برائی میں پڑ ہی چکے ہیں اور نشچت روپ سے نرک کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسلامی نیموں کا پالن نہ کرنے کے لیے جہاں پر کچھ لوگ طرح طرح کے بہانے بنایا کرتے تھے، وہیں پر ان کے مقابلے میں مضبوط ایمان والے کچھ ایسے بھی تھے جو ہر استھان اور ہر استھتی میں پیغمبر اسلام کے آدیشوں کا پالن کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر مدینے کے رہنے والے 8 لوگوں کا ایک گٹ پیغمبر اسلام کی سیوا میں اپستھت ہوا۔ وہ لوگ بہت غریب تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ایشور کے دوت، ہم بھی جہاد میں بھاگ لینا چاہتے ہیں، کنتو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ تو ہمارے پاس دھن ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی سواری ہے جس پر سوار ہو کر ہم جہاد کے لیے کہیں جائیں۔ اس گٹ نے پیغمبر اسلام سے انورودھ کیا کہ وہ ان کی کچھ سہایتا کرے تاکہ وہ بھی جہاد میں بھاگ لے سکیں۔ ان کے جواب میں پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے پاس بھی تم لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لوگ روتے ہوئے وہاں سے باہر چلے گئے۔ جب نردھن لوگوں کا گٹ پیغمبر اسلام کی سیوا سے بدائی لے کر باہر جا رہا تھا تو لوگوں نے ان کے رونے کا کارن پوچھا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، کنتو ہمارے پاس جہاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر کچھ دھنوان لوگوں نے ان کے لیے سامان اپلبدھ کروایا اور وہ جہاد کرنے کے لیے گئے۔ ان پرستھتیوں میں سورہ توبہ کی آیت سنکھیا 92 نازل ہوئی، اور اسی پرکار ان لوگوں کے لیے بھی کوئی برائی نہیں جو جہاد میں بھاگ لینے کے لیے آپ کے پاس آئیں کہ آپ انہیں کسی سواری پر بٹھا دیں، تو آپ نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر تمہیں سوار کرا سکوں۔ وہ ایسی استھت میں آپ کے پاس سے واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے دکھ کے آنسو بہ رہے تھے کہ کیوں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ جہاد کا خرچ اٹھا سکیں۔ یہ آیت ہمیں سیکھ دیتی ہے۔
تو شوتاؤ، اسی کے ساتھ ہمارا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ودا چاہتے ہیں، خدا حافظ۔